الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرش کا سایہ یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 234 تا 245 سے لیا گیا ہے دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ عرش کا سایہ پڑھ یا سن لے اسے قیامت کی سخت گرمی میں عرش کا سایہ نصیب فرما کر اپنے راضی ہونے کی خوشخبری عنایت فرما آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا دین کا قطب اعظم حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں اسی اہم کام کے لیے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا عرش کا سایہ ملے گا پیارے پیارے اسلامی بھائیو میدان محشر کے ہولناک ماحول میں کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ پاک اپنے جن مطیع و فرما بردار خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی شمول ہوگا چنانچہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سورج ایک میل پر ہوگا پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا شدت پیاس سے زبانیں باہر نکل پڑی ہوں گی لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے عرش کے سائے کی صحیح معنوں میں اسی وقت اہمیت پتہ چلے گی اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کیجئے گرمیوں کی دوپہر ہو اور آپ چلچلاتی دھوپ میں لکو دک صحرا کے اندر ننگے پاؤں چل رہے ہوں اگر ایسے میں کوئی سائبان یا سائے کی جگہ نظر آ جائے اس وقت آپ کو کس قدر خوشی ہوگی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں حالانکہ قیامت کی تمازت یعنی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی دھوپ کوئی حیثیت نہیں رکھتی لہذا بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے سایہ عرش پانے کے لیے آج دنیا میں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچائیے اور اللہ پاک کی جناب میں سایہ عرش کی بھیک بھی مانگتے رہیے یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو شرح کلام رضا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی مناجات کے تینوں اشعار کا نمبر وار خلاصہ ملاحظہ فرمائیے نمبر ون اے میرے معبود جب محشر بپا ہوگا और वहां की होशुरबा गर्मी से लोगों के बदन तप और जल रहे होंगे। उस वक्त हम गुलामाने मुस्तफा को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम की ठंडी ठंडी हवा नसीब करना। नंबर 2, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, कयामत की खौफनाक तपिश और जानलेवा प्यास की शिद्दत से जब जबानें सूख कर कांटा हो जाएं और बाहर निकल पड़े, ऐसे दिल हिला देने वाले माहौल में साहिबे जूदो सखावत मालिके कौसरो जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का साथ नसीब करना। काश 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 हम प्यास के मारों को साहिबे कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के प्यारे प्यारे हाथों से कौसर के छलकते जाम नसीब हो जाएं। नंबर 3, ऐ रब्बे करीम, कयामत के तपते हुए मैदान में कि जब सूरज खूब बिफरा हुआ आग बरसा रहा हो, आह ऐसी जान घुलाने वाली सख्त कड़ी धूप में जबकि भेजे खोल रहे हों हमारे उस सैयदो सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जिनका धूप में साया जमीन पर ना पड़ता था, कि अजीम शान झंडे का हमें साया अता करना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छाई बुराई का पेशवा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी को अपना कायद पेशवा और लीडर बनाने से पहले आखिरत के नफा और नुकसान के ताल्लुक से खूब गौर कर लेना चाहिए। जो खुशनसीब किसी खुदा रसीदा नेक बंदे को अपना पेशवा बनाएगा, उसकी बातों पर अमल करेगा, वो बरोज़े कयामत उसी के साथ होगा। और जो बदनसीब दुनिया की रंगीनियों में बदमस्त होकर दौलत व मनसब की हवस के सबब बुरे पेशवा यानी लीडर के फंदे में फंस जाएगा और दुनिया में उसकी बातों पर चलेगा, तो महशर में उसी पेशवा यानी लीडर के साथ होगा। हम सभी को कयामत की रुसवाई से डरना चाहिए। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना के तर्जमे वाले पाकीज़ा कुरान कंजुल ईमान मा खजानुल इरफान सफ़ा 539 पर पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। तर्जमा कंजुल ईमान, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाही अलैह इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, उस इमाम के साथ बुलाएंगे जिसका वो दुनिया में इत्तेबा यानी पैरवी करता था। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, इससे वो इमाम जमा यानी अपने दौर का पेशवा मुराद है, जिसकी दावत पर दुनिया में लोग चले, ख्वा उसने हक की दावत दी हो या बातिल की। हासिल ये है कि हर कौम अपने सरदार के पास जमा होगी, जिसके हुक्म पर दुनिया में चलती रही और उन्हें उसी के नाम से पुकारा जाएगा कि फुला के मुत्तबईन यानी इत्तेबाओ पैरवी करने वाले। नेकी के इमाम का खुश अंजाम, जिन खुश नसीबों को तबलीगो इरशाद और नेकी की दावत के हवाले से दुनिया में मनसब वजाहत मिला होगा और उन्होंने बसद इखलास खुश उसलूबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई होगी, उनके और नेकी और भलाई के कामों में उनका तआवुन करने वाले मुखलिसीन के आखिरत में खूब वारे न्यारे होंगे। इस ज़मन में एक ईमान अफरोज़ रिवायत सुनिए और झूमिए। चुनाचे सैयदना काब रदी अल्लाहु अन फरमाते हैं, नेकी के इमाम को कयामत में लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि अपने परवरदिगार के दरबार में हाजिरी दो, तो वो हाजिरी देगा के दरमियान से हिजाबात यानी पर्दे उठ जाएंगे। उसको जन्नत में जाने का हुक्म होगा, वो जन्नत में जाकर अपनी मंजिल यानी मकाम और भलाई के कामों में ताउन करने वाले दोस्तों की मनाजिल यानी मकामात देखेगा। उससे कहा जाएगा कि ये फुलां की मंजिल है और ये फुलां की, तो वो जन्नत में उन तमाम चीजों को देखेगा जो खुद इसके लिए और इसके दोस्तों के वास्ते तैयार हैं। और अपनी मंजिल यानी मकाम उन सब दोस्तों की मंजिलों से अफजल पाएगा। फिर उसे जन्नत के हुल्लों यानी मलबूसात से एक हुल्ला यानी लिबास पहनाया जाएगा और उसके सर पर जन्नत के ताजों में से एक ताज रखा जाएगा और उसका चेहरा चमकना शुरू होगा यहाँ तक कि चांद जैसा हो जाएगा। जो भी उसे देखेगा तो कहेगा, या अल्लाह इसे हम में से बना दे। यहाँ तक कि वो अपने उन दोस्तों के पास आएगा जो खैरो भलाई में उसका साथ दिया करते और नेकी के कामों में हाथ बटाते थे। उन्हें कहेगा, ए फुला खुश हो जा, जन्नत में अल्लाह पाक ने तेरे लिए ऐसे ऐसे इनामात तैयार कर रखे हैं। उन्हें इस तरह की खुशखबरियां सुनाता रहेगा यहाँ तक कि उसके अपने रोशन चेहरे ही की तरह उन दोस्तों के चेहरे भी खुशी से चमक उठेंगे और इस तरह से लोग उन्हें चमकते चेहरों से पहचानेंगे। पुरजिया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, शहजियाउद्दीन पीरे बासफा के वास्ते। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसेट के एक जुमले ने दिल पर ऐसी चोट लगाई के प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के महके महके दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रही है। इसी दीनी माहौल की बरकत से बेशुमार इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें गुनाहों से तौबा करके नेकी की दावत की धूमे मचाने में मशगूल हो गए। आपकी तरगीब व तहरीस के लिए एक मदनी बहार गोश गुजार की जाती है। चुनाचे पंजाब पाकिस्तान के शहर चिश्तियां शरीफ के एक इस्लामी भाई के बयान का लुब्बे लुबाब है। नमाजों से जी चुराना, दाढ़ी मुंडाना, वालिदैन को सताना वगैरह वगैरह गुनाह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गाने बाजे सुनने का तो उनको जुनून यानी पागलपन की हद तक शौक था। तरह तरह के गाने उनके मोबाइल फोन और कंप्यूटर में हर वक्त मौजूद रहते। वो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के गुनाह में भी मुलव्विस थे। जीन्स के सिवा किसी और कपड़े की पतलून नहीं पहनते थे। हत्ता के एक मर्तबा ईद के मौके पर वालिद साहिब ने उनके लिए सूट सिलवा लिया, लेकिन उन्होंने उसे पहनने से इनकार कर दिया और नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक पैंट शर्ट खरीद कर ईद के पुरमसर्रत मौके पर इसी लिबास में मलबूस हुए। फैशन का दिलदादा होने की वजह से उन्होंने इमामा और कुर्ते पाजामे के बारे में तो कभी सोचा भी ना था। उनके सुधरने के असबाब कुछ यूं हुए कि उनकी करीबी मस्जिद में जो नए इमाम साहिब तशरीफ लाए, वो खुशकिस्मती से आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता थे। एक दिन उन्होंने उन पर इनफरादी कोशिश करते हुए हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की रगबत दिलाई। इमाम साहिब की इनफरादी कोशिश के सबब उन्होंने दो एक बार हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत कर ही ली। एक दिन इमाम साहिब ने उनके वालिद साहिब को दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से जारी होने वाले सुन्नतों भरे बयान की कैसेट मुर्दे की बेबसी तोहफतन दी। अल्लाह पाक की रहमत से एक रात उस इस्लामी भाई को ये कैसेट सुनने की सआदत हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, उस बयान की बरकत से उनके दिल की दुनिया जेरो जबर होने लगी। खासकर इस जुमले, इंसान को मरने के बाद अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, गाड़ी हुई तो वो भी गैराज में खड़ी रह जाएगी, ने उनके दिल में इनकलाब बरपा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हाथों हाथ अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा कर ली। अपना मोबाइल और कंप्यूटर भी गानों की नुहूसत से पाक कर दिया और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो गए। इस दीनी माहौल ने उन्हें यकसर बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने चेहरे पर प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी मुबारक और सर पर इमामा शरीफ का ताज सजा लिया और सुन्नत के मुताबिक लिबास जेबतन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बयान देते वक्त वो इस्लामी भाई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में दावत इस्लामी के शोबाए तालीम के जिम्मेदार की हैसियत से दीनी कामों की धूमे मचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। यकीनन मुकद्दर का वो है सिकंदर, जिसे खैर से मिल गया मदनी माहौल। यहाँ सुन्नतें सीखने को मिलेंगी, दिलाएगा खौफे खुदा मदनी माहौल। गुनाहगारो आओ, सियाहकारो आओ, गुनाह तुमसे देगा छुड़ा मदनी माहौल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मस्जिद का इमाम गोया इलाके का बेताज बादशाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने मस्जिद के पेश इमाम इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश ने एक मॉडर्न और फैशन परस्त नौजवान को सुन्नतों का पैकर बना दिया। मसाजिद के इमाम साहिबान आम इस्लामी भाइयों की निस्बत उमूमन ज्यादा बाअसर होते हैं, खुसूसन खुश अखलाक और मिलनसार इमाम मस्जिद उस इलाके का गोया बेताज बादशाह होता है। लोग उसका बेहद एहतराम करते और उसकी बात दिलो जान से मानते और सर आंखों पर लेते हैं। आइम्मा किराम की खिदमत में मेरी इल्तिजा है कि वो सिर्फ जुमातुल मुबारक के बयान ही पर इक्तफा ना फरमाए, मौके की मुनासिबत से रोजाना ही फैजान सुन्नत के दर्स की तरकीब बनाए और दर्स देने वाले मुअल्लिम की हौसला अफजाई के लिए उसमें शिरकत फरमाए, खूब इनफरादी कोशिश बढ़ाए, अलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। हर माह कम से कम 3 दिन के लिए आशिकान रसूल के मदनी काफिले में सुन्नतों भरे सफर की सआदत भी पाएं। वाकई अगर इमाम साहिब खुद सफर करेंगे तो इंशा अल्लाह उनकी देखा देखी उनके मुक्तदी भी बाआसानी मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएंगे। बहरहाल हर इमाम मस्जिद को अपने इस मनसबे वजाहत से जायज फायदा उठाते हुए अपने इलाके में मदनी कामों की धूमे मचाकर सुन्नतों की बहारों का मदनी समा खड़ा कर देना चाहिए और अपने लिए सवाब आखिरत का खूब खूब जखीरा इकट्ठा कर लेना चाहिए। अपने मुक्तदियों से ज्यादा बेतकल्लुफ बनकर अपना वकार खराब करने के बजाय फालतू बातों से बचकर उन्हें सुन्नत भरे महके महके मदनी फूल पेश करते रहने में दो जहानों की भलाई है। इस जिमन में एक नसीहत आमोज हिकायत समाप्त कीजिए। चुनाचे साथ के लिए साथ काफी। हजरत सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत मुअज्जम में एक शख्स हाजिर होकर नसीहत का तालिब हुआ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, नंबर 1, अगर तू रफीक चाहता है तो अल्लाह पाक की याद तेरा रफीक यानी साथी काफी है। नंबर 2, हमराही चाहता है तो किरामन कातिबीन यानी आमाल लिखने वाले बुजुर्ग फरिश्ते तेरे लिए काफी हैं। नंबर 3, अगर इबरत चाहता है तो दुनिया का फानी होना इबरत के लिए काफी है। नंबर 4, अगर मुनीसो गमखार दरकार है तो कुरान करीम काफी है। नंबर 5, अगर शगल यानी काम चाहिए तो इबादत काफी है। नंबर 6, अगर वाइज यानी नसीहत करने वाला चाहता है तो मौत काफी है। ये 6 मदनी फूल इनायत करने के बाद 7वें नंबर पर इरशाद फरमाया, नंबर 7, ये बातें अगर तुझे पसंद नहीं है तो दोजख तेरे वास्ते काफी है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहि खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। छुपकर बेहयाई करने वाले की गलतफहमी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम नेकी की दावत का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। अगर उनसे कोई नसीहत का तालिब होता तो उसको आखिरत में काम आने वाले मदनी फूल इनायत फरमाया करते थे। वाकई अगर सफर व हजर हर जगह याद इलाही का साथ हो, हर दम एहसास हो अल्लाह पाक देख रहा है, जैसा कि पारा 30 सूरतुल अलक की 14 आयत करीमा में इरशाद होता है, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى। ترجمہ کنزل ایمان، क्या ना जाना कि अल्लाह देख रहा है। तो फिर इंसान गुनाहों के मामले में खौफजदा और चौकन्ना रहता है, और जाहिरन और खुफियतन यानी पोशीदा तौर पर अल्लाह पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से बचता है। जो लोग अपने नाकिस ख्याल में छुप कर बुराइयाँ करते हैं, उनको ये बात खूब जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जिन खताओं को ये पोशीदा समझ बैठे हैं, वो सब की सब बुराइयाँ और बेहयाइयाँ बदियाँ लिखने वाला फरिश्ता जानता है और लिख भी रहा है। अगर किसी बंदे को इस बात का कमा हक्कुहु एहसास हो जाए, तो उसको इस कदर शर्मिंदगी और नदामत हो कि जी चाहे कि बस अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। पारा 26 सूरह कौफ आयत नंबर 18 में इरशाद होता है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद। तर्जमाए कंजुल ईमान, कोई बात वो जबान से नहीं निकालता कि उसके पास एक मुहाफिज तैयार ना बैठा हो। पारा 30 सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 10-12 में है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। तर्जमाए कंजुल ईमान, और बेशक तुम पर कुछ निगेबान हैं मुअज्ज़ज़ लिखने वाले के जानते हैं जो कुछ तुम करो। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, पता लगा कि आमाल लिखने वाले फरिश्ते हमारे छुपे और जाहिर अमल को जानते हैं, वरना तहरीर कैसे करें। सुभान अल्लाह, जब आमाल लिखने वाले फरिश्ते हमारे छुपे हुए आमाल जानते हैं, तो फिर तमाम फरिश्तों बल्कि जमी मखलूकात के सरदार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने गुलामों के दिलों के हालात क्यों ना आशकार यानी जाहिर होंगे। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाही अलैह बारगाह रिसालत में अर्ज गुजार हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे या नहीं। मुश्किल अल्फाज के मानी, सरे अर्श अर्श के ऊपर, मलकूत फरिश्तों के रहने की जगह, या जाहिर शरहे कलाम रजा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श के ऊपर और फर्श यानी जमीन के अंदर का सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे नजर है। दुनिया जहान में कोई भी ऐसी शय नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर ना हो। फरिश्ते को रफीके सफर बनाने का अमल। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसे दुनिया के बेवफा होने का एहसास हो, हर दम मौत का तसव्वुर बंधा हो, तिलावतो इबादत उसका मशगला हो, जिक्रो दुरूद का सिलसिला हो, तो दोनों जहानों में उसका बेड़ा पार हो जाए। मुकीम हो या मुसाफिर, हर एक को चाहिए कि वो फजूल बक बक के बजाए जिक्रो दुरूद और सुन्नतों भरी प्यारी प्यारी बातों में अपना वक्त गुजारे। खुसूसन सफर से मुताल्लिक एक मदनी फूल कबूल फरमाइए। चुनाचे मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़मे हिदायत, नौशाए बज़मे जन्नत, मंबाए जूदो सखावत, सरापा फजलो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने हिफाजत निशान है। जो शख्स सफर के दौरान अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो रखे और उसके जिक्र में मशगूल रहे, उसके लिए एक फरिश्ता मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला मुकर्रर हो जाता है। और जो बेहुदा शेर व शायरी या फजूल बातों में मसरूफ रहे, तो उसके पीछे एक शैतान लग जाता है। सरवरे दीन, लीजिए अपने नातवानों की खबर, नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नेकी की दावत देना भी जिहाद है। हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाहु अन से रिवायत है कि हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम रसूल मोहतशम शाफ़ए उमम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इरशाद मुअज़्ज़म है। जिहाद की चार किस्में हैं। नंबर वन, नेकी का हुक्म देना, और नंबर टू, बुराई से मना करना, और नंबर थ्री, सब्र के मकाम पर सच कहना, और नंबर फोर, फासिकों से बुग्ज रखना। जिसने नेकी का हुक्म दिया उसने मोमिनीन के हाथ मजबूत किए, और जिसने बुराई से मना किया उसने फासिकों की नाक खाक आलूद की। फासिक के फिस्क से नफरत होनी चाहिए। हज़रत सैयदना अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, किसी फासिक मुसलमान से उस तरह नफरत नहीं करनी चाहिए कि उसकी ज़ात ही से नफरत हो जाए, हाँ उसके गलत अमल और नाजायज काम को बुरा जानना चाहिए, क्योंकि उसके ये गुनाह जो बाई से नफरत हैं आर्जी हैं, लेकिन उसके दिल में मौजूद ईमान मुस्तकिल है। ये खुद एक मोमिन है, और ये ऐसे उमूर हैं जो मोहब्बत को लाजिम करने वाले हैं, लिहाजा इन पाकीज़ा खसलतों की वजह से उसकी ज़ात से मोहब्बत होनी चाहिए, और उसके बुरे कामों और गुनाहों से नफरत होनी चाहिए। फासिक की सोहबत सख्त नुकसानदेह है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जहन में रहे कि फासिक के फिस्क से नफरत रखनी है, इसके माना हरगिज़ ये नहीं कि फासिक की सोहबत भी इख्तियार करें। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब गीबत की तबाहकारियां 505 सफहात सफा 172 पर है। बुरी सोहबतों से बचना बेहद ज़रूरी है, वरना आखिरत तबाह हो सकती है। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, शरीयत मुताहरा ने नमाज में कोई जिक्र ऐसा नहीं रखा है जिसमें सिर्फ जबान से लफ्ज निकाले जाएं और माना मुराद ना हो। तो आला हजरत रहमतुल्लाही अलैह के इस फरमान की रोशनी में आपकी याद दहानी के लिए अर्ज है कि नमाज वितर में आप दुआए कुनूत तो पढ़ते ही होंगे, जिसमें ये भी है व नखलाउ व नतरुकु मन यफजुरुक, यानी या अल्लाह हम अलग करते हैं और छोड़ते हैं उसको जो तेरी नाफरमानी करे। अगर आज से पहले माना मालूम नहीं थे तो चलिए अब पता चल गया, लिहाजा अपने रब्बे करीम से किए जाने वाले रोज रोज के इस वादे को अब अमली जामा पहना ही दीजिए। और नमाज ना पढ़ने वालों, गालियों, बदगुमानियों, तोहमतों, गीबतों, चुगलियों और तरह तरह से नाफरमानियों में मुलव्वस रहने वालों, फासिकों और फाजिरों की बैठकों और उनकी सोहबतों से तौबा कर लीजिए। और कुरान करीम भी ऐसों की सोहबत से मना फरमाता है, जैसा कि पारा 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 68 में इरशाद होता है, वइम्मा युन्सियन्नक शैतान फला तक़ुद बादा ज़िक्रा मअल क़ौमिल ज़ालिमीन। तर्जमा कंजुल ईमान, और जो कहीं तुझे शैतान भुलावे तो याद आए पर जालिमों के पास ना बैठ। तफसीरात अहमदिया में इस आयत मुबारका के तहत लिखा है, यहाँ जालिमीन से मुराद काफिरीन, मुब्तदेईन यानी गुमराह व बददीन और फासिकीन हैं। गीबत की तबाहकारियां सफ़ा 173 पर है। नेकी की दावत देने के लिए फासिकों के पास जाना जायज है। जो इस्लामी भाई मुत्तकी परहेजगार हो, वो भी यारी दोस्ती में नहीं बल्कि सिर्फ नेकी की दावत की हद तक नाफरमानों और बिगड़े हुए लोगों के साथ बैठ सकता है। चुनांचे दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना के तर्जमे वाले पाकीज़ा कुरान कंजुल ईमान मा खजानुल इरफान सफा 260 पर पारा 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 69 में रब्बुल इबाद इरशाद फरमाता है, وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ। तर्जमाए कंजुल ईमान, और परहेजगारों पर उनके हिसाब से कुछ नहीं, हाँ नसीहत देना शायद वो बाज आए। हज़रत सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह खज़ाइनुल इरफान में इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि पंदो नसीहत और इजहारे हक के लिए उनके पास बैठना जायज़ है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताब नेकी की दावत का मजमून यहाँ ख़त्म हुआ। दर्ज ज़ेल सवालात अमीर अहले सुन्नत के मलफूजात से लिए गए हैं, जिन्हें मौजू की मुनासिबत से यहाँ शामिल किया जा रहा है। अल्लाह पाक को ऊपर वाला कहना कैसा? सवाल, क्या ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ऊपर है? जवाब, अल्लाह पाक जगह से पाक है, लिहाजा ये नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक ऊपर है या नीचे है या दाएं या बाएं है। बाज़ लोग बोलते हैं कि अल्लाह पाक आसमान पर रहता है और कोई बोलता है कि अर्श पर रहता है, हालांकि अल्लाह पाक के लिए कोई मकान यानी ठहरने, क़याम करने और रुकने की जगह हो ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह पाक का कोई बदन नहीं और वो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। ये कहना कि अल्लाह पाक ऊपर है, इसे उलमा ने कुफ्र लिखा है। अल्लाह पाक की ज़ात के ताल्लुक से इस तरह के मसाइल समझने के लिए दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब का मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे कुफ्रियात का पता चल जाएगा जो आजकल लोगों में राइज हैं। गुमा से गुजरे गुजरने वाले, सवाल, आपने फरमाया है कि अल्लाह पाक को ऊपर वाला या अल्लाह पाक अर्श पर है ये नहीं कहना चाहिए, जबकि हमने सुना है मेराज की रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए और अर्श ऊपर ही है, तो इसका क्या मतलब है? जवाब, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए अर्श पर गए, ये अवाम की बात है। ये दुरुस्त है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए, मगर अल्लाह पाक का दीदार कहाँ हुआ इसका तस्किरा नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहत को ला ले, किसे बताएं किधर गए थे। खिरत का माना है अक्ल और समझ, गुमान यानी ख्याल, जहत का माना है सिमत या डायरेक्शन। शेर का मतलब ये हुआ कि अक्ल से कह दो कि अब हथियार डाल दे, सोचे नहीं, क्योंकि गुजरने वाले ख्याल से भी वराउल वरा हो गए हैं, बल्कि यहाँ खुद जहत और समत को भी लाले पड़े हैं, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं। इस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर की आंखों से अल्लाह पाक की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं। किस तरह देखा या कैसे देखा, ये बातें सोचने की नहीं बल्कि मान लेने की हैं। सवाल, इन अशआर की वजाहत फरमा दीजिए। वास्ता प्यारे का ऐसा हो के जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पर धूमे मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया। जवाब, इन अशआर की वजाहत ये है कि या अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासिता, हम पर ऐसा करम हो जाए कि जब हम दुनिया से जाएं तो तेरे गवाह ये ना कहें कि नाफरमान दुनिया से गया, बल्कि फरिश्ते खुशी मनाएं कि एक नेक बंदा हमारे पास आया, और दुनिया वाले अफसोस करें कि एक नेक बंदा हमसे बिछड़ गया। यहाँ शाहिद से या तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत मुराद है, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शाहिद भी है। जैसा कि कुरान करीम की एक आयत मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन अलकाबात शाहिद, मुबशिर और नज़ीर जिक्र किए गए हैं। يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Para 22 Suratul Ahzab, Ayat number 42, Tarjamai Kanzul Iman. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. یا شاہد سے مراد مومنین ہیں، یعنی جب میں مروں تو مسلمان یہ نہ کہیں کہ وہ فاجر گیا. میرا زیادہ رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہاں مسلمان مراد ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت فرمانے والے اور اپنے غلاموں کے عیوب چھپانے والے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کی عطا سے اس بات کا بھی علم ہے کہ کون فاجر ہے اور کون متقی ہے. عرش کا سایہ دلانے والا عمل، سوال، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب عرش کا سایہ ملے. جواب، احادیث مبارکہ میں قرض دار کو مہلت دینے یا قرضہ معاف کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ پاک اسے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک اور روایت میں ہے، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. عرش آدم پہ رب والا شعر پڑھنا کیسا؟ سوال، یہ شعر درست ہے یا نہیں؟ عرش آدم پہ رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. جواب، اس شعر کے ابتدائی الفاظ عرش آدم پہ رب میں بظاہر معاذ اللہ عرش آدم پر اللہ پاک کا مکان مانا گیا ہے، اور اللہ پاک کے لیے مکان ماننا کفر لزومی ہے. اگر اس شعر کی ابتدا میں عرش آدم کا رب پڑھیں تو شعر شرعی گرفت سے نکل جائے گا. تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اس کا کچھ قرض معاف کر دیا، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا.